ओम शांति। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, मन को वश करने का मन वशीकरण मंत्र, मन मना भाव। दुनिया में लोग कहते हैं मन को वश करना, मन को अपने नियंत्रण में रखना असंभव है, लेकिन बाबा ने अपने मन को वश करने के लिए अर्थात नियंत्रण में और अनुशासन में रखने के लिए हमें महामंत्र दिया है मन मना भव का। मन को वश करना अर्थात मन को जीतना। दुनिया में कहावत प्रसिद्ध है, मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है वो स्वराज अधिकारी बनता है, और जो स्वराज अधिकारी बनता है वो जगत जीत अर्थात विश्वराज अधिकारी बनता है। तो मन को जीतने के लिए मन बना भव के मंत्र का जाप करते रहना बहुत जरूरी है। मन मना भव अर्थात मन मना भव अर्थात मन को परमात्मा की याद में मनाना, लगाना, रिझाना, रमन करना, व्यस्त रखना। तो इस मंत्र के जाप से आत्मा शक्तिशाली बनती है, आत्मा निरोगी बनती है, और आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के द्वारा एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई भी हम कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप अजापा जाप करते रहें और स्वयं को अविनाशी खजानों से माला माल करते रहें। लेकिन इस मंत्र का जाप सफलतापूर्वक करने के लिए मन बुद्धि के बारे में विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने में दो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मन और बुद्धि का, और उसमें भी विशेष पांच बातें हैं। उन पांच बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं तो गारंटी है आपका ये अजापा जाप आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। जानना चाहेंगे? 45 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पांच बातें हैं। पहली बात, मन हमारा कैसा हो, मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मन मना भाव का मंत्र का जाप करता ही रहता है, कभी थकता नहीं है। थोड़ा सा भी मन बोझिल होता है, शीतलता कम होती है, हल्कापन कम होता है, तो जाप करना छोड़ देता है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। बुद्धि का मेजर रोल इस कार्य में है। तो किसी न किसी तरीके से युक्ति को अपनाकर बुद्धि को सदा एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है। तो बुद्धि की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और कार्यदक्षता चरम पर होती है। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। उस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। आत्मा एक शक्तियों का पुंज है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने होना चाहिए, तभी इन दोनों शक्तियों का हम प्रयोग कर सकेंगे। प्रायः देखा गया है लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, उसके कारण मंत्र का जाप करना मुश्किल लगता है। मैं आपके सामने क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं मन और बुद्धि के अंतर का। आपको दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है? देखा है? दिखाई दे रहा है? आपकी आंखें मुझे देख रही है, फिर भी वो शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि रूपी आंख, आत्मा की आंख। दूसरा प्रश्न, कैसा वो शांति स्तंभ है, कुछ बातें बताइए। फिर आप एक एक बात मुझे बता रही, सोच सोच के ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की वो यादगार है, उसमें शांति स्तंभ में शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ का जिक्र किया है। ये सोच सोच के जो बता रहे हैं वो है आपका मन। तो एकांत में बैठकर चेक करना है, ये जो देखने वाली शक्ति है ये बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है, इसको फील करना है, इसको अनुभव करना है। फिर आप देखेंगे सेकंड में जब चाहे इस मंत्र का जाप आप कर सकेंगे। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है? कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हमें मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। मन और बुद्धि का रिश्ता जानकर फिर मन को कंट्रोल करना है। बुद्धि के चार पांच काम हैं। मन का काम केवल सोचना है, संकल्प क्रिएट करना है, लेकिन बुद्धि के चार पांच काम है। पहला काम देखना, आत्मा की आंख वो कहलाती है। दूसरा काम निर्णय लेना। तीसरा काम मेमोरी का काम भी वो करती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण काम है, आत्मा का दिल बुद्धि कहलाती है। बाबा कहते मुझे दिल से याद करो, दिमाग से नहीं दिल से याद करो। अब वो दिल किधर है? जब भी दिल की बात आती है हमारा हाथ यहां जाता है हार्ट पर। ये दिल है क्या? ये तो हार्ट है, शरीर का पार्ट है। तो आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है उसको दिल कहते हैं, वो है बुद्धि। पांडवों की बुद्धि प्रीत बुद्धि थी, उनके दिल में भगवान के प्रति प्यार था। बाबा कहते हाथ काड़े दिल याड़े, हाथ से काम करो और दिल से मुझे याद करो, अर्थात बुद्धि से मुझे याद करो। बाबा के दिल में बैठना अर्थात ऐसा कुछ सेवा करना, ऐसा कुछ काम करना जो बाबा हमें अपने दिल में बिठा दे। भगवान के दिल में स्थान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, हमें अपने दिल में बाबा को स्थान देना होगा। तो बाबा के दिल में हमें स्थान मिलेगा। दिल से बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा के दिल में बसे रहेंगे। और पांचवा काम है चित्त का काम भी बुद्धि करती है। जब भी हम भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर के सामने जाते थे कहते थे, हे देवी जी मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे माफ करना। वो चित्त कहां है? बुद्धि। इसका मतलब बुद्धि पर बहुत बातें निर्भर होती है। इसलिए कहते जैसे बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है, जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है, और जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है। मन केवल उसका फॉलोअर है, जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता है। तो हमें मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, उसके बॉस को पकड़ना है। बुद्धि को पकड़ना अर्थात बुद्धि को किसी न किसी लक्ष्य पर केंद्रित करना। जिसको बुद्धि देखती है उसी पर मन ऑटोमेटिक सोचता है, ये नियम है। अभी चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को इस मंत्र का जाप करने के लिए कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे यूज करें इनको। जब भी हम एकांत में बैठते हैं जाप करने के लिए, बुद्धि रूपी नेत्र को परमात्मा पर फोकस करना है, परम धाम में या सूक्ष्मोतन में। जितनी देर तक बुद्धि बाबा को देखती है उतना देर तक मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता ही रहता है और कुछ सोच ही नहीं सकता है। लेकिन किसी कारण बुद्धि वहां से हट जाती है तो मन भी हट जाता है। जब बुद्धि वहां से लक्ष्य से हटती है तो हमें क्या करना है, चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। जितनी चेकिंग पावर चेंजिंग पावर बढ़ती जाती है उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। जब भी योग में बैठते हैं मंत्र का जाप करते हैं तो बुद्धि पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। बुद्धि मेरी एक सेकंड के लिए भी इधर उधर न जावे, तो पूरी एकाग्रता इस योग की प्रक्रिया में आपकी बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में वॉच करो, कैच करो और मैच करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी वॉचिंग पावर कैचिंग पावर मैचिंग पावर बढ़ेगी उतनी कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती जाएगी। और पांचवी बात मन बुद्धि के बारे में, आत्मा रूपी मां के ये दो बच्चे हैं। मां क्या करती है, बच्चों का संभाल करती है, बच्चों की संभाल करती है और बच्चों को अच्छी खुराक खिलाती है। तो हमें भी सारे दिन भर में माया दुश्मन से मन बुद्धि को सेफ रखना है। उसके लिए क्या करना है, सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखना है। बाबा के घर में जब जाते हैं सवेरे, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, समान का अभ्यास करते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, तो ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर हमें पहनकर रखना है। ये सेफ्टी है मन बुद्धि की। माया वार भी करेगी तो भी असर नहीं होगा मन बुद्धि पर। अभी इन पांच बातों को अच्छी तरह से जानने के बाद मन को बहुत अच्छी तरह से कार्यरत रखने के लिए मन के बारे में भी थोड़ा सा अच्छा ज्ञान डिटेल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि मन का मैं मालिक हूं, आत्मा मुझ मालिक के ऑर्डर पर मन चलना चाहिए, मेरे नियंत्रण और अनुशासन में मेरा मन रहना चाहिए। जब आत्मा मालिक उसको अपने पोजीशन में बैठती हैं तो मन बुद्धि उनके नियंत्रण में रहते हैं और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति होती है। और जो संगम युग में स्वराज अधिकारी बनते हैं वह सतयुग त्रेता युग में औरों के राजा बनते हैं। दूसरी बात, मन जैसे एक घोड़े के समान है। घोड़े पर जो सवारी बैठती है उसकी लगाम अपने हाथ में अच्छी तरह से पकड़ता है तब घोड़ा मंजिल पर पहुंचाता है। तो मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम अपने अटेंशन की मुट्ठी में पकड़ते हैं तो मन रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाता है, मन मना भव का जाप करने में मदद करता है। मन एक बच्चे के समान है। मां अपने बच्चे को बड़े प्यार से ट्रेनिंग देती है, समझाती है कि देखो बेटा वो आग जल रही है वहां नजदीक नहीं जाना, हाथ जल जाएगा। बच्चा मानता है। देखो वहां खड्डा है, वहां नहीं जाना, गिर जाओगे, चोट लगेगी, मानता है। तो मन को भी हमें समझाना है, देखो मन, तुम माया के संग में रहोगे तो मेला हो जाओगे, आपको भगवान के संग में रहना है। जब काम करते हैं तो ये सीढ़ी जो है ना योग की, मन मना भो के मंत्र की, वो चढ़ते रहो, और जब काम होता है तो नीचे उतर के काम में बिजी रहो, जिन की तरह काम करते रहो। तो उसको हमें समझाना है। मन मेरी रचना है, मैं आत्मा उसका रचयिता हूं। रचना हमेशा रचना के अधीन रहती है। आत्मा कमांडर बनके जो भी ऑर्डर देती है वो सल्यूट मारते हैं मन और बुद्धि। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छी तरह से मन को काबू में रखना है, मन से अच्छी तरह से काम लेना है। अभी मन को भटकाने वाली कौन सी बातें हैं, मनमना भव का मंत्र का जाप करने में कौन सी बाधाएं आ सकती है, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, जब हम इस साकारी दुनिया में बैठते हैं तो इस दुनिया का कोई ना कोई पदार्थ, व्यक्ति, चीजें जो है, बातें, वो हमारे मन को आकर्षित करती है। कोई भी अच्छी चीज मेरे पास होगी तो मन मेरा बार बार वहां जाएगा। इसलिए बाबा कहते अच्छी चीज आपको रखनी नहीं है। मैंने चुपचाप किसी को नहीं बताया है, माउंट आबू के बैंक में 1 किलो सोना रखा है, किसी को नहीं पता है, लॉकर में रखा है। अब जब शरीर छोड़ूंगा ना तो वो सोना ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा मुझे। वो क्या काम का सोना। तो कोई भी अच्छी चीज मुझे अपने पास नहीं रखनी है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है, विनाश होने वाली है, यहां कितनी भी अच्छी चीज है वो सतयुग में जाने वाली नहीं है। तो ये विनाशी चीजों से क्या मोह लगाना। सोना भी आपके पास है तो भी वो तमो प्रधान है, सतयुग का सोना सतो प्रधान होगा। इस मंत्र के जाप करने में दूसरी बाधा यह है कि बार बार हमारा मन अपने देह के तरफ और दूसरों के देह के आकर्षण के तरफ भागता रहता है। हमारा सबसे जास्ती लगाव किससे होता है, हाँ जी, सबसे जास्ती अपने देह से क्यों होता है। 24 घंटे हमारे साथ रहता है, कोई दुनिया में है जो 24 घंटे साथ रहेगा आपके, कितना भी नजदीक का संबंधी है ना, 2-4-5 घंटा 8 घंटा रहेगा, बाद में दूर रहता है। तो इस देह से आत्मा का इतना लगाव है, इतना लगाव है, हम बाबा के पास परम धाम में जाते हैं जाप करने के लिए, दूसरे घड़ी उसको खींचता है। इसी कसम कशा में हमारा समय चला जाता है। इसलिए बाबा कहते जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना उतना हिसाब है। अभी इस 84वां जन्म है, 83 जन्म में तो हमने ये देह छोड़ते आए,
अब इस देह से क्या मोह रखें? ये साधन है, केवल
साधना करने के लिए साधन बाबा ने दिया है देह का। बॉडी से प्यार करना है या गॉड से प्यार करना है, वो आप सोचो, चॉइस है। ये बॉडी ने तो कौड़ी हमें बना दिया, भगवान तो हमें हीरे तुल्य बना रहा है, ऊपर उठा रहा है। इस देह रूपी खाल ने ही आत्मा को खाली कर दिया है। इसलिए जितना हो सके इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करते जाना है। हर मुरली में बाबा यज्ञ के शुरुआत से आत्मा समझो ये पाठ पक्का करा रहे हैं। हर मुरली में, कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने ये पाठ दोहराया नहीं होगा। बोलो क्यों भाई? बाबा क्यों हमारे पीछे पड़ा है? आत्मा समझो, आत्मा समझो, क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है, एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का जो आत्मा में देह का भान कूट कूट के भरा पड़ा है उसको हटाना है, और 21 जन्म आत्मा का भान नेचुरल रहे उसको जुटाना है, और ये काम हमने घर जाने के पहले पूरा करना है। थोड़ा समय हमारे पास है, कितनी मेहनत करनी होगी आप सोचो, पूछो अपने से। एग्जामिनेशन के दिन नजदीक होते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं दिन और रात क्या है पता नहीं रहता है, लगे रहते पढ़ाई में। तो ऐसे हमें इस अभ्यास में पूरी लगन के साथ रहना है, जुटे रहना है। ठीक है ना? झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये झूठा भान है, सत्य भान तो आत्मा का है। सत्यता की शक्ति बढ़ाने के लिए सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास बढ़ाना है। सारा दिन देहधारियों के पीछे बुद्धि भागती है। ये हमारा संस्कार बहुत कड़ा है 63 जन्मों का आकर्षित होने का। आकर्षित होना होगा, आकर्षित करना, ये बहुत कड़ा संस्कार हमारा 63 जन्मों का है। इसलिए आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हमको बहुत पक्का करना है। जितने इस ज्ञान मार्ग में हम पुराने हो जाते हैं उतनी अलौकिकता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति हमारी बढ़ती रहे, नहीं तो पुराने होने से कोई मतलब नहीं। दिव्य स्वरूप में टिकना और दिव्य स्वरूप को देखने की मेरी शक्ति बढ़ रही है, माना मेरी प्रोग्रेस हो रही है। केवल साल गिनने से कुछ फायदा नहीं। तीसरी बात बाधा डालने वाली, देह के संबंधी हमें अपने तरफ बहुत खींचते हैं, क्योंकि 83 जन्मों का पाड़ बजाकर हम यहां बैठे हैं, अनेक आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है, जाने अनजाने किसी के साथ हमारा लगाव झुकाव होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, स्नेह होता है। कारण क्या है? अनेक आत्माओं के साथ हिसाब का किताब बड़ा बना हुआ है। ज्ञान और योग की शक्ति से उसको हमें जीरो करना है, और इस जन्म में भी जो संबंधी हैं उनसे भी किनारा करना है।
थोड़े समय के लिए पहाड़ बजाने के लिए काका मामा चाचा भाई बहन बेटा मां बने हैं, नहीं तो है कौन किसका। जब परम धाम में आत्मा बैठती है, बाजू में आत्माएं होती है, किसी का संबंध होता है? पत्थर की तरह हम वहां पड़े रहते हैं। मेरी मां मेरा बच्चे ये तो यहां आके होता है कौन किसका। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। तो जो भी हमारे बंधन हैं, जो हमारी बुद्धि को बांधते हैं, अपने तरफ खींचते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। कौन सा संबंध जास्ती खींचता है भाई? हाँ जी, बच्चों का, माताओं को बच्चों का और बच्चों को मां का। सारा दिन मम्मी 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 करते रहेंगे और मां भी सारा दिन बच्चा 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 करते रहेंगे। है ना? अब बाबा कहते हैं बच्चा मुझे बना दो। माताएं क्या समझती है, बच्चा मेरा कैसा हो? कृष्ण जैसा हो। अब ये कृष्ण का भी बाप है, कृष्ण से भी बढ़कर है, इसको अपना बच्चा बना दो ना। क्योंकि ये बच्चा तो मुझे वहां तक स्मशान तक पहुंचाएगा, ये बच्चा तो सतयुग द्वक ले जाएगा। ये बहुत आज्ञाकारी वफादारी बच्चा है। तो बाबा को बच्चा अनुभव करने से जो लौकिक बच्चा है उसके तरफ हमारा जो छोटा मोटा लगाव झुकाव होता है वो खत्म हो जाता है। और मां का भी रूप में हमें बाबा को अनुभव करना है। कितनी मां है भाई आपको? हैं जी, कितने? पांच है। कितनी है? तीन है, पांच है, छह। लिखो, एक मां जिसकी मिट्टी में ये शरीर बना हुआ है, भारत मां। दूसरी मां जिसके गोद में ये शरीर बना हुआ है, लौकिक मां। तीसरी मां जिसके मुख से मेरा जन्म हुआ है, वो ब्रह्मा मां, अलौकिक मां, दिव्य जन्म देने वाली मां। चौथी मम्मा, जो हमें सूक्ष्म रीति से अभी भी पालना दे रही है। और पांचवी ड्रामा रूपी मां। जब भी तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है, ड्रामा रूपी मां हमें आंचल में छिपा देती है, व्यर्थ से बचा देती है। और सबसे बड़ी मां परमात्मा, वो सबसे बड़ी मां है। इतना प्यार हमें मिल रहा है भाई, सारे संसार में हमारे जैसा प्यार किसी को मिलता है? बोलो ना, तो ताली तो बजाओ भाई। इतना प्यार जितना हमें मिल रहा है किसी को नहीं मिलता है। जाओ दुनिया ढूंढ के आओ, कोई नहीं ऐसा मिलेगा आपको। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पालन हार। ऐसी पालना देते हैं, ऐसी पालना देते हैं, हार पहनाने के लायक पूजनीय हमें बनाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, है ना? अभी ये मनमना भव का मंत्र का जाप करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा बोर होने लगता है। क्या बिंदी समझकर बिंदी को याद करे, कितना करे, एक घंटा दो घंटा, अब बोर क्यों होता है भाई बताओ? होता है नहीं होता है पहले बताओ, क्यों बोर होता है बताओ ना? कारण पता है तो निवारण कर सकेंगे उसका। हाँ जी,
हा? जो बाबा से हमें बड़ा लड्डू मिल रहा है ना, वो लड्डू भूल जाते हम। 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही मध्याजी भव का मंत्र भूल जाते हैं ना, इसके कारण मनमना भव के मंत्र की रुचि करने में कम होती है। कभी भी कोई व्यक्ति काम कुछ भी करता है तो सोचता है मुझे इससे क्या मिलेगा। आप आबू में आने के पहले घर में जब थी ना, सोचती थी मुझे वहां जाने से क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बाबा के घर की पालना मिलेगी, फटाफट आ गए यहां पहुंच गए। तो बीच बीच में मध्याजी भव का मंत्र का जाप करते जाएंगे, वर्षे को याद करते जाएंगे, तो मन मना भव का मंत्र का जाप करने में रुचि सदा बनी रहेगी, कभी कम नहीं होगी। ठीक है ना? संगम में इतने खजाने बाबा तो दे ही रहे हैं, लेकिन 21 जन्मों की बादशाही दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे से छीन सके, है कोई? इसलिए कहते हैं आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता और मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। जो भगवान ने यहां लिखा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको मिटा दे। कितने भाग्यशाली हम, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है ना भाई? तो बाबा कहते लूटो, जितना भाग्य लूटना है लूटो, लुटाओ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। सारे कल्प में एक ही बार हमें मिलता है, और इस मंत्र का जाप करने से एक सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति होती है। दुनिया में कोई बहुत जल्दी परिवर्तन कराता है ना, तो उसको क्या कहते, आपने तो छू मंत्र कर दिया, मिनट में ये बदली कर दिया, परिवर्तन किया। ये छू मंत्र शब्द कहां से आया भाई, कहां से आया बोलो ना? शिव मंत्र से आया छू मंत्र। क्या बाबा ने हमें दिया है? शिव मंत्र दिया है, तो शिव मंत्र से लोगों ने छू मंत्र कर दिया, क्योंकि शिव मंत्र का जाप करने से परिवर्तन आता है जो हमें कभी सोच भी नहीं सकते, इतना परिवर्तन आत्मा में आता है, जादुई परिवर्तन अनुभव होता है। तो हमेशा इस मंत्र का जाप चलता रहे। लोग क्या करते हैं दुनिया में, हाथ पर कपड़ा रखते हैं, माला पकड़ते हैं और उंगलियों से मंत्र शिव 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 राम 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 करते गुप्त रीति से। वो किसकी यादगार है? इस देह रूपी कपड़े में जो आत्मा छिपी हुई है ना, वो मन मन उसका मन राम 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 शिव 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 जो मंत्र करता है ना चुपचाप, उसकी यादगार हुआ है। इसलिए बाबा कहते योग तो गुप्त है आपका, किसी को दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है तो अंदर ही अंदर, गुप्त ही गुप्त, ये माला का मन का मन से फेरते रहे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, कमाई बढ़ती रहे उसके लिए क्या करना है, हाँ जी, चार्ट रखना है। मैं बाबा से 73 में पहली बार मधुबन में हिस्ट्री हॉल में मिला था, नागपुर से आया था बाबा से मिलने के लिए। मुरली के बाद बाबा संदली पर बैठे, मैं सामने बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया मेरे प्रति, सदा इस ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना।
अब एक वर्ष का ही पुराना बच्चा था मैं, वो चार्ट क्या होता है पता नहीं था,
लेकिन जब मैं मधुबन में आया 76 में, तो दादी के क्लासेस, मुरली के क्लासेस, बाबा के, उसके आधार पर चार्ट बनाया हर घंटे का, अलग अलग विधि से, अलग अलग रीति से, मन को बिजी रखने का और मनमना भव का मंत्र का जाप करने का। एक वर्ष तक मेंटेन किया, उसके बाद बाबा से मिलना हुआ, बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है।
एक साल के बाद ही,
और वो मेरे ईश्वरीय जीवन की शुरुआत थी। ग्राफ बाद में ऐसा ही गया, चढ़ती कला की अनुभूति सदा होती रही। तो इस मंत्र का जाप आसान तरीके से करने के लिए हमें क्या करना है, जितना हो सके देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना। आप देखना, जैसे बाबा के और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, मैं और बाबा के बीच में छोटी सी दीवार है देह के भान की, उसको अगर हम हटा देते हैं, भुला देते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, एकदम कंबाइंड। इसलिए गुप्त ही अभ्यास करते रहे। क्योंकि कमाई करने का समय सारे कल्प में केवल संगम युग का ही है, और संगम युग हाथी चला गया और पूंछ बाकी है, पूंछ के भी पूंछ बाकी है, और ये जमाना कैसा है भाई, जमाना कैसा है, कैसा है जमाना, जमा होने ही नहीं देता है, जमा का खाता बढ़ने ही नहीं देता है। कमाई करने का समय है, जमा करने का समय है, लेकिन मन इधर उधर सारा तरफ भटकता रहता है, जमा होने ही नहीं देता है। इसलिए हमें लोभी बनना है, ये मेरी अविनाशी कमाई सदा बढ़ती रहे, जो साथ चलने वाली कमाई है ये मेरे पास पड़ती रहे, खजानों से मैं माला माल होती रहूं आत्मा। इस ब्राह्मण जीवन में हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई, एक सेकंड में कैसा पता चलेगा, कौन सी निशानी है, हल्कापन बढ़ना और खुशी का बढ़ना, ये निशानी है हमारी प्रोग्रेस हो रही है। हल्कापन बढ़ता है क्योंकि बोझ हमारे सिर से नीचे उतरता है, और खुशी क्यों होती है, क्योंकि कमाई बढ़ती है, माल मिलता है, खजाने मिलते हैं। तो बाबा कहते एक तरफ कमाई करो और दूसरी तरफ माया रूपी बच्ची को कहते जाओ बच्ची, इसको कमाई नहीं करने देना, मैं तुम्हें ड्यूटी देती हूं। बताओ, हमको बीच में फंसा देते बाबा। कमाई, ये माई रूपी माया है ना, पीछे पड़ी रहती है हमारे, कमाई होने ही नहीं देती। बाबा ऊपर में बैठे हैं परमधाम में, हमें पूछ रहे बच्चे इनकम चाहिए क्या, बोलो इनकम चाहिए क्या, परम धाम से देख रहे नीचे पूछ रहे इनकम चाहिए, बोलो ना, अच्छा इनकम चाहिए, इनकम, कम इन, कम इन, आओ आओ मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ। सागर के किनारे बैठ गए तो जितना मर्जी लूटो और लुटाओ, कोई उसके लिए हद नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बाबा के पास जाकर बैठना होगा, इन कम कम इन, कम आई बाबा मैं आ गई आपके पास, आ गई तो कमाई कमाई हो गई भाई, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, एक कौड़ी जेब से खर्च नहीं करना और मैंने बादशाह बनाना है आपको। क्या करो, मेरे बाजू में आके बैठ जाओ, मेरे से खजाने लेते जाओ और सारे संसार की आत्माओं को बांटते जाओ। तो ये जो दातापन का संस्कार आपके साथ में मिल जाएगा तो सतयुग में आपको राजा महाराजा का पद मिल जाएगा। कोई ताकत नहीं है उसको छीन ले, ठीक है भाई। इसलिए बस होशियार विद्यार्थी, सम सभी भी होशियार विद्यार्थी हैं, लेकिन होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं भाई, है जी, होशियार जो होश में रहता है। बाबा का इशारा क्या है, समय का क्या इशारा है, मुझे क्या करना है, होश में रहता है वो होशियार कहता है अपने को, वो समय के पहले भरपूर करता है। अगर मेरा खजानों का खाता भरपूर नहीं होगा तो मेरा मन खाता रहेगा। मेरे पास खजानों का खाता भरपूर नहीं होगा तो मन खाता रहेगा ना। भगवान मिला था, सागर मिला था, लेकिन मैंने लूटा नहीं, ये मन पश्चाताप करता रहेगा। तो इसलिए हमें इस मंत्र का जाप अच्छी तरह से करते जाना है, क्योंकि इससे हमें बहुत लाभ हो रहे हैं और होते रहेंगे, ठीक है ना। आपको अगर कोई पूछता है आपके जीवन के सबसे क्वेश्चनों में पल कौन से हैं, क्या जवाब देंगे, सबसे क्वेश्चनों में पल, गोल्डन मोमेंट्स कौन से हैं, क्या जवाब देंगे भाई, है जी। जब मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के संग में अनुभव करती हूं, ये पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है, गोल्डन मोमेंट्स है, सारे कल्प में सबसे महत्वपूर्ण पल है, ये मेरी पूंजी है। इस पूंजी को हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि सारे कल्प में ऐसे पल आने वाले नहीं है, ठीक है। ओम शांति।